नमस्ते बच्चों, चलो रेडियो मधुबन पर दोबारा से व्याकरण की पढ़ाई करते हैं 10 मिनट। मैंने तो व्याकरण कहा, लेकिन ये संस्कृत और हिंदी दोनों के व्याकरण होंगे, तो संस्कृत के व्याकरण को तुम्हें थोड़े मनोयोग से सीखना पड़ेगा। कल हमने पढ़ा कि ध्वनि, अक्षर, शब्द और वाक्य इस प्रकार से भाषा बनती है, जिसका उपयोग हम एक दूसरे के साथ अपनी बातें कहने के लिए, अपनी भावनाओं को बांटने के लिए, अपने अनुभवों को बांटने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। साथ ही हमने कुछ संस्कृत वाक्य भी पढ़े जिसमें अहम और त्वम शब्दों का प्रयोग हमने किया था। तो अहम के साथ जब कोई क्रिया जुड़ती है तो उसका रूप अलग होता है, त्वम के साथ जब वही क्रिया जुड़ती है तो उसका रूप अलग हो जाता है। जैसे अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम खादामि, अहम पिबामि, अहम पठामि, अहम पश्यामि। और त्वम के लिए उस क्रिया का रूप थोड़ा सा बदल जाएगा, जैसे त्वम गच्छसि, त्वम आगच्छसि, त्वम खादसि, त्वम पिबसि, त्वम पठसि, त्वम वदसि इत्यादि। इस पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा, जिसे नाम भी कहा जाता है, और अंग्रेजी व्याकरण में इसे नाउन कहा जाता है। जो क्रिया की जाती है उसे करने वाले के लिए जो द्योतक शब्द है वही संज्ञा है। तो संज्ञा की व्याख्या क्या है? मैंने बचपन में याद किया था कि किसी व्यक्ति, जाति, जगह, जानवर, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, पानी, भलाई इत्यादि। तो इस व्याख्या से ही तुम्हें बोध हो जाएगा कि किसी व्यक्ति का नाम हो तो वह संज्ञा है, जैसे राम, लता, मीना, आदित्य इत्यादि। जाति, तो जातियाँ कई प्रकार की होती हैं, वस्तुओं की अलग अलग जातियाँ होती हैं, जैसे टेबल, पंखा, कुर्सी, घर, दीवार, सीमेंट, ये सारी वस्तुओं की जातियाँ हैं। गाय, घोड़ा, बकरी, ये प्राणियों की जातियाँ हैं। कौआ, गरुड़, मोर, ये पक्षियों की जातियाँ हैं। तो इस प्रकार अलग अलग जातियाँ होती हैं। जगह के नाम को भी संज्ञा कहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, पटना, कलकत्ता। जानवर के नामों को भी संज्ञा ही कहेंगे, गाय, घोड़ा, बकरी, जो पहले मैंने जातियों में गिनाया। वस्तु, जैसे टेबल, कुर्सी, पंखा, ये वस्तुओं की जातियों में मैंने पहले भी गिनाया है। और भाव को भी संज्ञा ही कहा जाता है, जैसे भलाई, कठिनाई, ममता, स्वतंत्रता, ये सारे भाव हैं। और ये जो शब्द मैंने गिनाए ये सारे संज्ञा में ही आते हैं, ये व्याख्या याद रखना। अब संस्कृत के लिए भी संज्ञा का वर्णन यही हो जाता है। यही सारे शब्द जो मैंने हिंदी में गिनाए, इनके जो संस्कृत शब्द होंगे वो सारे संज्ञा में आएंगे। और संज्ञा के बाद क्या होता है? सर्वनाम। संज्ञा को हमें बार बार प्रयोग में ना लाना पड़े तो संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और मैं अपनी बात कर सकती हूँ, तुम्हारी बात कर सकती हूँ, और किसी अन्य व्यक्तियों की बात कर सकती हूँ। इसलिए सर्वनाम के तीन पुरुष कहे जाते हैं। जब मैं अपनी बात कर रही हूँ तो उत्तम पुरुष की बात कर रही हूँ, जब तुम्हारी बात कर रही हूँ तो मध्यम पुरुष की बात कर रही हूँ, और जब किसी अन्य व्यक्ति के विषय में या किसी अन्य संज्ञा के विषय में मुझे कुछ कहना है तब मैं जिस सर्वनाम का उपयोग करूँगी उसे प्रथम पुरुष कहा जाता है। तो ये पुरुष नाम से जो वर्गीकरण मैंने किया ये इसलिए करना पड़ता है कि क्रिया का रूप पुरुष के हिसाब से बदलता है। जैसे हम कहते हैं मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, वह जाता है, ऐसे ही संस्कृत में भी कहेंगे अहम गच्छामि, त्वम गच्छसि, सः गच्छति। और सर्वनाम में पुरुष के साथ साथ एक वचन और बहुवचन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और संस्कृत में तो द्विवचन का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो वचन के हिसाब से भी क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे हिंदी में ही देखो, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, लेकिन हम लोग जाते हैं, तो जाता से जाते हो गया। इसी तरह संस्कृत में भी अहम गच्छामि, लेकिन वयम अर्थात हम लोग गच्छामः, जाते हैं, और द्विवचन हो हम दोनों तो आवाम गच्छावः। इस प्रकार पुरुष और वचन के हिसाब से क्रियापद का रूप बदल जाता है, और हिंदी में लिंग के अनुसार भी क्रिया का रूप बदल जाता है, लेकिन संस्कृत में वह नहीं होता। तो संस्कृत में सभी लिंगों के लिए क्रिया एक ही जैसे रहती है। हिंदी में मैं कहूँगी मैं जाती हूँ या मैं जाता हूँ, तुम जाती हो या तुम जाते हो, वह लड़की जाती है, वह लड़का जाता है। और संस्कृत में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के साथ साथ नपुंसकलिंग भी होता है, लेकिन क्रिया का रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। इसलिए हमें केवल दो बातें याद रखनी हैं, एक है पुरुष और एक है वचन। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं, और बार बार संज्ञा का उपयोग अच्छा नहीं लगता है कान को सुनने में, इसलिए उसकी जगह सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। और सर्वनाम तीन पुरुषों में बांटा होता है। उत्तम पुरुष मेरी बात करता है, मध्यम पुरुष जो तुम्हारी बात करता है, और प्रथम पुरुष जो मैं और तुम से अलग अन्य व्यक्तियों की बात करता है। इसी प्रकार एकवचन, द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं सर्वनाम के लिए, और संज्ञा के लिए भी होते हैं। जैसे एक पेड़, दो पेड़, बहुत से पेड़, एक बकरी, दो बकरियाँ, बहुत सी बकरियाँ। तो मित्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं, अगला पाठ कल पढ़ेंगे। तुम सुनते रहो मेरा ये कार्यक्रम, और सुनते रहो रेडियो मधुबन। मुस्कुराते रहो। नमस्कार।